नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही विशेष उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है, सूक्ष्म जगत के परिशोधन हेतु गायत्री साधना के विशेष प्रयोग। ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
हाँ, और ये आज के समय के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल। तो हमारा मकसद है गुरुदेव के बताए इन खास प्रयोगों को और उनके पीछे के कारणों को थोड़ा गहराई से समझना। चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि पूज्य गुरुदेव समाज की जो समस्याएं हैं, जैसे बीमारियां फैलना या अकाल पड़ना, आपसी झगड़े, मारकाट, इन सब का कनेक्शन वो सूक्ष्म वातावरण के प्रदूषण से जोड़ते थे।
अच्छा, मतलब ये सिर्फ हवा पानी वाले प्रदूषण की बात नहीं है, ये कुछ और है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारे संकल्पों का प्रदूषण है। वो अदृश्य माहौल जो हम सब मिलकर बनाते हैं और जो फिर हमारी दुनिया को, मतलब स्थूल जगत को प्रभावित करता है। और गुरुदेव कहते थे कि जैसे पुराने जमाने में श्री राम ने, श्री कृष्ण ने बड़े बड़े यज्ञ करके इस सूक्ष्म जगत को सुधारा था, माहौल को ठीक किया था, वैसे ही आज भी इसकी शुद्धि बहुत जरूरी है।
तो इसी शुद्धि के लिए फिर बड़े यज्ञों का विचार आया होगा, जैसे वो 1 लाख कुंडी यज्ञ की बात आती है।
हाँ बिल्कुल, पहले वही संकल्प लिया गया था, 1 लाख कुंडी महायज्ञ। लेकिन आप सोचिए, उसको करने में व्यवहारिक कठिनाइयां कितनी रही होंगी।
हाँ जाहिर है, 1 लाख तो बहुत बड़ी संख्या है, 1000 कुंडी यज्ञ भी कितना बड़ा आयोजन होता है।
सही बात है, 1000 कुंडी का प्रबंधन ही अपने आप में एक चुनौती थी, तो 1 लाख कुंडी तो लगभग असंभव सा था। और यहीं पर पूज्य गुरुदेव की जो व्यावहारिकता है वो सामने आती है।
तो फिर इस चुनौती का क्या कहते हैं, हल कैसे निकाला गया?
हल था दीप यज्ञ। गुरुदेव ने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विकल्प दिया, ऐसा जो हर कोई अपने घर में आराम से कर सके।
दीप यज्ञ। अच्छा, ये कैसे होता था, इसमें क्या करना होता था?
5 धूप बत्तियां लगानी है, मतलब कुल 25, और साथ में 5 दीपक जलाने हैं।
बस इतना ही, और इससे वो यज्ञ वाला लाभ मिल जाता था?
हाँ बिल्कुल। देखिए, धूप बत्तियों से हवन सामग्री वाला काम हो गया, सुगंध फैली, औषधीय धुआं वातावरण में गया, और दीपकों से घी वाला प्रयोजन पूरा हुआ, ऊर्जा मिली, प्रकाश फैला। तो ये प्रतीकात्मक रूप से घर घर में यज्ञ के सार को पहुंचाने का एक तरीका था।
ये तो सच में बहुत सरल है, और इसे कितने बड़े पैमाने पर करने का सोचा गया था?
पूज्य गुरुदेव का संकल्प बहुत बड़ा था, 24 लाख घरों में एक साथ दीप यज्ञ। 24 लाख।
24 लाख घर।
हाँ, और इसे पुरुष या खासकर उन्होंने कहा महिलाएं बहुत आसानी से अपने घरों में करवा सकती थी। और ये सिर्फ दिए और धूपबत्ती जलाने तक ही नहीं था, ये पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम बनाया गया था।
1 घंटे का कार्यक्रम, उसमें और क्या क्या होता था?
उसमें सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव की अपनी आवाज में उनके साथ 24 गायत्री मंत्रों का पाठ था। वो मानते थे कि उनकी आवाज के साथ जब सब मिलकर मंत्र जपेंगे तो उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा, साधक की श्रद्धा और गुरु की प्राण चेतना दोनों मिल जाएंगे।
अच्छा, मंत्र पाठ के अलावा?
उसके साथ था 15 मिनट का एक खास देव संगीत। कहा जाता है कि उसमें पूज्य माताजी और देव कन्याओं का स्वर था, वो माहौल में एक शांति, एक दिव्यता घोलने के लिए। और आखिर में 1/2 घंटे का पूज्य गुरुदेव का रिकॉर्डेड व्याख्यान, मतलब ज्ञान यज्ञ भी साथ में, सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान भी।
तो ये सिर्फ एक मतलब अनुष्ठान नहीं था, ये तो पूरा आत्म सुधार और ज्ञान पाने का एक पैकेज जैसा था।
बिल्कुल सही। और इसी ज्ञान यज्ञ को जमीन पर उतारने के लिए पूज्य गुरुदेव ने 3 देव दक्षिणा का आवाहन किया, और ये दक्षिणा कोई पैसा या चीज नहीं थी।
अच्छा, तो क्या थी ये देव दक्षिणा?
ये थे भावनात्मक संकल्प, जीवन में बड़े बदलाव लाने वाले 3 संकल्प। पहला था नशा मुक्ति।
नशा मुक्ति।
हाँ, गुरुदेव का कहना था कि भाई नए युग के लिए तैयार होना है तो तन, मन, बुद्धि, व्यक्तित्व सबको स्वस्थ रखना होगा, और इसके लिए हर तरह का नशा छोड़ना जरूरी है, पहला कदम।
ठीक है, और दूसरा संकल्प?
दूसरा था खर्चीली शादियां बंद करना, मतलब दहेज लेना देना बंद हो, जेवर का फालतू दिखावा बंद हो, एकदम सादी शादियां हो। गुरुदेव मानते थे कि ये जो फिजूल खर्ची है शादियों में, ये गरीबी और बेईमानी की एक बड़ी जड़ है समाज में।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है।
बिल्कुल, और उन्होंने शांति कुंज में ऐसी सादी शादियों की व्यवस्था भी बताई थी जहां बिना तामझाम की वैदिक रीति से विवाह हो सके।
ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार था उस समय।
और तीसरी देव दक्षिणा क्या थी?
तीसरी थी सबको शिक्षा देना, खास तौर पर प्रौढ़ शिक्षा पर जोर था। लक्ष्य ये कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम 5 अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाए।
सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, गुरुदेव ने कहा कि ऐसी शिक्षा हो जो जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करे, नैतिक शिक्षा हो, व्यवहारिक ज्ञान हो। उन्होंने इसके लिए खास छोटी छोटी पुस्तकें लिखने की बात भी कही थी।
तो अगर हम इसका सार निकालें तो पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्म जगत की शुद्धि के लिए एक पूरी योजना दी। एक तरफ सरल दीप यज्ञों से सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा बनाना और दूसरी तरफ व्यक्तिगत जीवन में ये 3 बड़े सुधार लाना, नशा छोड़ना, शादी शादी करना और शिक्षा फैलाना।
हाँ बिल्कुल, ये व्यक्ति और समाज दोनों के एक साथ ऊपर उठने का रास्ता था। अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत ही अनोखा मॉडल है। अपनी जिम्मेदारी समझो, मिलकर आध्यात्मिक प्रयास करो और उससे समाज और वातावरण दोनों को सुधारो।
ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कदम भी जब एक बड़ी सोच और सामूहिक इच्छा से उठाए जाते हैं तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
सही बात है।
तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक विचार के साथ। पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तिगत संकल्पों को, मतलब देव दक्षिणा को, और दीप यज्ञ जैसे सरल सामूहिक अनुष्ठानों को सीधे सीधे सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि और हमारी दुनिया की समस्याओं के समाधान से जोड़ा।
हाँ,
आज के जमाने में जब व्यक्तिवाद इतना हावी है, क्या इस तरह के कनेक्शन की कोई प्रासंगिकता बची है? क्या हमारे छोटे छोटे नैतिक सुधार, हमारे छोटे छोटे अनुष्ठान वाकई में समाज और पर्यावरण पर कोई बड़ा असर डाल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।